कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स की बजाय हम इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट्स के अहद में एंटर हुए हैं। हम दरख्त काट रहे हैं ताकि हम वहाँ कुछ प्लांट लगा सकें, किसी गाड़ियों के बनाने का या किसी सीमेंट के बनाने का। आज हर आदमी को क्लाइंट सेटिस्फैक्शन की फिक्र है या बॉस को खुश रखने की फिक्र है, लेकिन फैमिली को मुतमईन करने की फिक्र उस लेवल पे नहीं है। जितनी नेटवर्किंग बढ़ रही है उतना रिलेशनशिप कमजोर हो रहा है। ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी ने क्या चैलेंजेस हमारे लिए खड़े किए हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए पैदा की हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं या चैलेंजेस ज्यादा हैं, कितने लोगों का ख्याल है कि अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, कितने लोगों का ख्याल है चैलेंजेस ज्यादा हैं? अच्छा, पहले हम ये देख लेते हैं कि अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। 21st सेंचुरी में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी उसने हमें क्या दी है?
मोर कनेक्टिविटी, डिस्टेंस सिस्टम हो गए,
ठीक है, इंटरकल्चरल कनेक्शंस, ठीक है, हम अब बियॉन्ड कम्युनिटी बाउंड्रीज या कम्युनिटी, हम अपने इंटरकल्चरल कनेक्शंस या रिलेशनशिप्स या कम्युनिकेशंस ज़्यादा बेहतर अंदाज से करने के काबिल हो गए। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है 21st सेंचुरी का। इससे पहले इंटर क्रॉस कल्चरल कनेक्शंस इस लेवल पर इंसानी तारीख में इतनी बड़ी तादाद में नहीं हुए थे। यानी इस वक्त ये बहुत मुमकिन है कि किसी दुनिया में, किसी शहर में या किसी गांव में रहने वाला कोई भी इंसान अक्रॉस द कॉन्टिनेंट या कोई और दूसरे मुल्कों और कॉन्टिनेंट्स के लोगों से भी, उधर कहीं दूर दराज के गांव या शहर में रहने वाले आदमी से कम्युनिकेशन में हो। इस बात के इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं और वो हम उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसके अलावा कोई और अपॉर्चुनिटी जो 21st सेंचुरी ने पैदा की हो? इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा, ठीक है, इंफॉर्मेशन नॉलेज नहीं बन पा रही, नॉलेज विजडम नहीं बन पा रही, वो एक अलग चैलेंज है, लेकिन इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। यानी इस वक्त किस टॉपिक पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था, इस वक्त उसको एक्सेस करना खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीरियड में या उनके फौरन बाद के दौर में जितना मुश्किल था उससे कहीं ज़्यादा आसान इस वक्त है, क्योंकि आपके पास सब कुछ, आपका जो डेटा है वो बड़े ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, बड़े एक्सेसिबल फॉर्म में अवेलेबल हो गया है और उसको टेक्नोलॉजी ने फैसिलिटेट किया है कि आपके पास इंफॉर्मेशन पहुँच जाए। तो आपके टिप्स पर है, इंफॉर्मेशन का एक्सेस जो है वो बहुत आसान हो गया। ये दूसरा बड़ा बेनिफिट कह लें या अपॉर्चुनिटी कह लें या प्लस कह लें। इसके अलावा और क्या है? इनोवेशन, अच्छा, इनोवेशन तो होती रही है। इनोवेशन 21st सेंचुरी का कमाल नहीं है, बल्कि इनोवेशन तो इंसानी तारीख में हमेशा होती रही है। और कोई ऐसी चीज़ जो 21st सेंचुरी का कमाल हो? एक है टेक्नोलॉजिकल फैसिलिटेशन। जो टेक्नोलॉजिकल फैसिलिटेशन है, जैसे मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, मैं इतने ज़्यादा जान नहीं लगा रहा और आप, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, या हम इस सेशन को कहीं और ले जा सकते हैं, महफूज कर सकते हैं, या हम अपनी मेमोरीज़ को रिकॉर्ड कर सकते, हम अपने एक्सपीरियंसेस को डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, डिजिटल फॉर्म में डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। इस तरह की और बहुत सारी फैसिलिटेशन टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी में पैदा की हैं। इसके अलावा और क्या किया है?
डेमोग्राफिक एक बड़ा चेंज
है। ये अब अगर हम ये कहें कि जो मूवमेंट है, अर्बनाइजेशन का प्रोसेस बढ़ गया है। अर्बनाइजेशन हम मतलब बहुत ज़्यादा मास स्केल मूवमेंट है अर्बन सेंटर्स की तरफ, लेकिन ये इसको हम ये इट्सेल्फ कोई बहुत पॉजिटिव बात नहीं है, लेकिन जो पॉजिटिव बात या अपॉर्चुनिटी कही जा सकती है वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कुछ नए तरह की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ इमर्ज हो रही हैं जो पहले उस तरह अवेलेबल नहीं थी। ये कुछ तीन चार बड़े एडवांटेजेस हैं जो 21st सेंचुरी ने हमारी लाइफ में आज के अहद में पैदा किए हैं। यानी पहली बात कि इंटरकल्चरल कनेक्शंस, दूसरी बात एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, तीसरी बात टेक्नोलॉजिकल फैसिलिटेशन, चौथी बात इस पूरे सिनेरियो में कुछ नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ पर्टिकुलरली इकोनॉमिक्स के अंदर. लेकिन चैलेंजेस क्या पैदा किए? एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो इकोलॉजिकल क्राइसिस की शक्ल में हम देख रहे हैं. हमारी इस लाइफस्टाइल का जो कार्बन फुटप्रिंट है, कार्बन फुटप्रिंट के लफ्ज से कितने लोग वाकिफ हैं? कार्बन फुटप्रिंट एक टर्म है, कार्बन फुटप्रिंट. कार्बन फुटप्रिंट का मतलब ये है कि ह्यूमन एक्टिविटी के नतीजे में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, और वो हमारी जो इकोलॉजी है या जो हमारा इकोसिस्टम है उसके लिए वो बेनिफिशियल नहीं है, बल्कि उसके लिए वो एक परेशानी है. उसके लिए, उसकी वजह से जो है वो हमारी इकोलॉजी जो है वो अंडर स्ट्रेस है. हमारा जो इकोसिस्टम है वो उसको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं. और ग्लोबल वार्मिंग का आप सब जानते हैं कि ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट होना शुरू हो गए हैं. दुनिया की जो टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, और एक बड़ा क्लाइमेटिक चेंज आ रहा है, और बहुत सारे और प्रॉब्लम्स पैदा हो रहे हैं. ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनका स्केल और इसकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा है. मतलब ना सिर्फ ये कि इसका स्केल बहुत बड़ा है, इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा है. मतलब आज से 20 साल पहले जिस तरह के इकोलॉजिकल क्राइसिस को 2020 में फोरसी किया गया, वो 2012 में एक्सपीरियंस कर लिया लोगों ने. 8 साल पहले वो क्राइसिस जिसको लोग सोच रहे थे कि अगर यही सिचुएशन रही तो 2020 में ये क्राइसिस आएगा, वो 2012 में लोगों ने देखा, दुनिया में उसको देखा. यानी इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा है. तो ये तो एक बड़े मैक्रो लेवल पे इकोलॉजिकल क्राइसिस है. हमारी इन सारी एक्टिविटीज़ का जो नेट आउटकम है वो कुछ इस शक्ल में आ रहा है कि हमें इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. इसके अलावा और क्या है? ठीक है, ओवरली टेक्नोलॉजिकल लाइफस्टाइल की वजह से हमारी लाइफ बुरी तरह मुतासर हुई है, हमारे मेटाबॉलिज्म मुतासर हुए हैं, हमारी साइकी उसके नतीजे में मुतासर हुई है, हमारा जो इनर पीस है वो उसके नतीजे में मुतासर हुआ है, हमारी जो कह लीजिए हमारा जो जहन है, नेचर से हम डिसकनेक्टेड होते चले जा रहे हैं. टेक्नोलॉजी से में हम जितना ज़्यादा इमर्जन है, टोटल इमर्जन इन टेक्नोलॉजी. इस वक्त की जो यूथ है वो जितना यानी 8 से 40 साल पहले जो आदमी था उसने जितना गौर से दरख्तों को और मट्टी को देखा था, आज की यूथ ने उतनी तवज्जो से पौधों को या मट्टी को या आसमान को नहीं देखा है. उसने मोबाइल के मॉडल्स को देखा है, उसने स्क्रीन को देखा है, उसने मुख्तलिफ किस्म के और गैजेट्स को देखा है. तो उसका एक नेचर से डिसकनेक्ट है. ये पर्सनल लेवल पे हम बात कर रहे हैं कि नेचर से डिसकनेक्ट है. मैक्रो लेवल पे हम बात कर रहे हैं कि इकोलॉजिकल क्राइसिस है, पर्सनल लेवल पर नेचर से डिसकनेक्ट है. और क्या इशू नज़र आता है 21st सेंचुरी में? ये बहुत अहम पॉइंट है. जितनी नेटवर्किंग बढ़ रही है उतना रिलेशनशिप कमज़ोर हो रहा है. नेटवर्किंग रिलेशनशिप का सब्स्टिट्यूट नहीं होता. नेटवर्किंग का प्री रेक्विजिट है डिस्टेंस, रिलेशनशिप का प्री रेक्विजिट है प्रेजेंस. आपकी और मेरी नेटवर्किंग उस वक्त चलेगी जब हम सब की नेटवर्किंग अगर करनी हो तो हम सबको इस कमरे से बाहर निकलना होगा और अपने अपने लोकेशंस पे अपने अपने जो कंफर्ट जोन्स हैं या कंफर्ट केबिन्स हैं उनके अंदर अपने आप को लॉक करना होगा, और वहाँ से हम एक दूसरे को एक मैसेज भेजेंगे, एक सिग्नल भेजेंगे, एक कम्युनिकेशन इनिशिएट करेंगे, कोई ग्रुप फॉर्म करेंगे, कोई कम्युनिटी फॉर्म करेंगे. वो जो ऑनलाइन कम्युनिटी है वो एक्चुअली, जिसे हम सोशल कम्युनिटी कहते हैं, एक्चुअली ये वो एक्सपीरियंस नहीं दे सकती. तो जो नेटवर्किंग है और जो रिलेशनशिप है, इन दोनों की डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट हैं. जो नेटवर्किंग के अंदर हम किसी इंसान से उस वक्त मिलते हैं जब हम चाहते हैं कि हम उससे मिलें. कोई इंसान हमसे हमारी मर्जी के बगैर नहीं मिल सकता. लेकिन रियल लाइफ रिलेशनशिप में कोई भी इंसान आपके घर का दरवाज़ा नॉक कर सकता है, और आपसे आके मिल सकता है और आपको कॉल कर सकता है, आपको आवाज़ दे सकता है, आपसे बात कर सकता है, आपको टच कर सकता है। तो ये जो नेटवर्किंग है या इस वक्त जो एक बड़ा चैलेंज है वो ये है कि हमारी जो फैमिली लाइफ है वो बहुत बुरी तरह मुतासर हुई है। और मैं ऐसी फैमिलीज़ को जानता हूँ जिन्होंने अपनी फैमिली का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, 3 बच्चे हैं और हस्बैंड वाइफ हैं, 5 लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप है और ये एक दूसरे से व्हाट्सएप पे ही कम्युनिकेशन करते हैं। अगर इन्होंने ये पूछना हो कि आज आप कितने बजे अवेलेबल होंगे तो व्हाट्सएप पे ही ये बात करते हैं, और अवेलेबल होंगे का मतलब ये होता है कि हम किस टाइम पर आपको कॉल कर सकते हैं। और अगर इन सब को इकट्ठे हफ्ते में एक दफ़ा खाना खाना हो तो वो व्हाट्सएप ग्रुप पे प्लान करते हैं कि कौन सा वो वीकेंड होगा जिसमें हम इकट्ठे बैठ के खाना खाएं, क्योंकि वो व्हाट्सएप कम्युनिकेशन होती है। लेकिन घर में, एक घर में रहते हैं ये लोग, तो ये जो पर्सनल डिस्कनेक्ट है ये बहुत बढ़ गया है। और क्या चैलेंज है जो 21st सेंचुरी ने हमारी लाइफ में, हमें प्लांट से ज़्यादा वो प्लांट जो ऑर्गेनिक प्रोसेस से ग्रो करता था, उससे ज़्यादा हमें वो प्लांट जिसकी इंस्टॉलेशन करनी होती है वो ज़्यादा अजीज़ हो गया है। यानी कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स की बजाय हम इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट्स के अहद में एंटर हुए हैं। मतलब हम दरख्त काट रहे हैं ताकि हम वहाँ कुछ प्लांट लगा सकें, किसी गाड़ियों के बनाने का या किसी सीमेंट के बनाने का या किसी बिजली के बनाने का प्लांट। लेकिन वो जो प्लांट था, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि प्लांट का ख़तरा इस बात का है कि हम वो आखिरी नस्ल हैं, जब हमारे सामने लफ्ज़ प्लांट कहा जाता है तो हमारे जहन में पौधे की शक्ल आती है, लेकिन आने वाली नस्ल के सामने जब प्लांट कहा जाएगा तो उसके जहन में कोई मशीनरी आएगी, कोई इक्विपमेंट्स आएंगे, कोई फैक्ट्री आएगी, कोई ऐसी इंस्टॉलेशंस आएंगी, कोई सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस आएंगी उसकी नज़र में, और उसके जहन में ये बात कि ये पौधों और दरख्त की बात हो रही है, ये बाद में आएगा। जैसे हमारे जहनों में पहले पौधे आते हैं, बाद में इंस्टॉलेशंस आती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो 21st सेंचुरी ने हमारे लिए पैदा किया है। और क्या बड़ा चैलेंज है? हाइपर कंस्यूमरिज्म। हाइपर कंस्यूमरिज्म, आज जो बच्चा इस दुनिया में पैदा हो रहा है, जब वो 20 साल तक पहुंचेगा 5,000 ड्रेसेस बना चुका होगा। 2019 में जो बेबी बॉर्न हुआ है, 2039 तक एस्टिमेट ये है कि 5,000 ड्रेसेस उसके लिए ख़रीदे जाएंगे। 5,000 ड्रेसेस इन जस्ट 20 ईयर्स। आज से 50 साल पहले आप इतने कपड़े नहीं बनाते थे, आप बहुत कम कपड़े बनाते थे और आप बहुत कम कपड़ों में गुजारा करते थे और सेटिस्फाइड फील करते थे। तो हाइपर कंस्यूमरिज्म जो है वो बहुत बढ़ गया है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने अपनी लाइफ में, अब ये क्वेश्चन है आपसे, आपने अपनी लाइफ में, थोड़ी देर 2-3 मिनट सोचिएगा, अब तक आपने अपनी लाइफ में कितने मोबाइल फोन्स चेंज किए हैं? ठीक है, हो सकता है आपको गिफ्ट मिला हो सकता है आपने परचेस किया हो, लेकिन कितने मोबाइल फोन्स आपने चेंज किए हैं? 6, 7, 3, 4, 2, 8, 7 dozen। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पर इसको सोचिए कि आपने मोबाइल फोन्स टोटल कितने अपनी पूरी लाइफ में चेंज किए हैं, पूरी लाइफ में कितने। और मोबाइल फोन हमारी लाइफ में, अब अगर मैं ये क्वेश्चन करूं कि फर्स्ट आपने मोबाइल फोन ओन करना कौन से टाइम से शुरू किया, उसमें कितने साल हो गए, मतलब आपको कितने साल से आप मोबाइल फोन ओन कर रहे हैं? 8 ईयर्स, 16 ईयर्स, 2002, 18 ईयर्स। यहाँ कोई भी 20 साल से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का यूज़र नहीं होगा। 14 ईयर्स, ठीक है। इस वक्त आप चूँकि पिछली सदी की पैदावार हैं हम सब, ठीक है। तो हमने 20 साल से कम अरसे में, यानी 15 से, हम में किसी को 15 साल हुए हैं, किसी को 12 साल हुए हैं, किसी को 10 से 15 साल हुए हैं ऑन एन एवरेज मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हुए, और ऑन एन एवरेज 4 मोबाइल्स 3 मोबाइल्स हर एक ने चेंज किए हैं। यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन जिसने अब तक एक ही मोबाइल, जो पहला मोबाइल था उसका, और वो मोबाइल 5 साल से ज़्यादा पुराना है, कोई ऐसा पर्सन बैठा हुआ है जो 5 साल से सेम मोबाइल ओन कर रहा है और यूज में है, 5 साल से ज्यादा हो गए आपके पास, 5 साल से ज्यादा हो गए और सेम मोबाइल है वो, जरा कोई ऐसा पर्सन है? अच्छा, चलें इस सवाल को एक और तरह से देखते हैं, इस सवाल को एक और तरह से देखते हैं। वो लोग इस कमरे में, वो लोग जिनके पास इस वक्त जो मोबाइल है वो लेस देन 1 ईयर हुआ है यूज में आए हुए, लेस देन 1 ईयर हुआ है आपके यूज में, यानी ये वाला मोबाइल जो आप ओन कर रहे हैं, जो आपके पास है, इस मोबाइल को आपके पास आए हुए अभी 1 साल से कम अरसा हुआ है, वो जरा हाथ रेस करें। 2 साल से कम अरसा हुआ है, अच्छा 3 साल से ज्यादा हो गए सेम मोबाइल, 3 ईयर मोर देन 3 ईयर्स सेम मोबाइल, मोर देन 4 ईयर्स सेम मोबाइल, मोर देन 5 ईयर्स ठीक है, ऐसा कोई नहीं है।
3 साल के बाद काम नहीं करता हो,
अच्छा हाँ, असल में उसमें जो पॉइंट है वो ये, उसमें पॉइंट ये है कि आपका जो हाइपर कंस्यूमरिज्म है, एक तो टेक्नोलॉजी बाय डिज़ाइन आपको फोर्स करती है कि आप अपडेट करें, जो ऑटो अपडेट है तमाम डिवाइसेस में जिसमें नेट चलता है उसमें ऑटो अपडेट इनेबल्ड है, आपको बहुत मुश्किल से वो साइंस समझनी पड़ेगी कि मैं ऑटो अपडेट रोकूं कैसे, कि ये मतलब एक तो ये होता है कि परमिशन ले मुझसे, विदाउट परमिशन वो अपडेट करता है और उसके नतीजे में आपका मोबाइल इतना मुश्किल हो जाती है उसे, इतना स्लो हो जाता है कि आप सोचते हैं कि शायद ये ऑब्सोलीट हो गया और मैं किसी नए मोबाइल को ख़रीद लूँ क्योंकि ये काम नहीं करता, ये स्लो है। और दूसरा मसला ये है कि हम लेटेस्ट के चक्कर में, कि हम अपने तारुफ के अंदर ये बात काउंट करवाना चाहते हैं कि आई एम द पर्सन हु बायज द लेटेस्ट थिंग, तो आई ऑलवेज हैव द लेटेस्ट गैजेट, तो ये भी एक तारुफ में इंसान अपने शामिल कर देता है। इसके नतीजे में जो कंस्यूमरिज्म है वो बहुत बड़ा है, तो हाइपर कंस्यूमरिज्म एक प्रॉब्लम है, और क्या प्रॉब्लम? आपकी प्राइवेसी जो है 21st सेंचुरी में प्राइवेसी से ज्यादा पर्सनल स्पेस की वैल्यू है। प्राइवेसी जो है, जो आज का यूथ है वो प्राइवेसी, यानी उसकी कोई, जो आप अभी सोशल इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं या जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, यानी मिसाल के तौर पर आपकी बर्थडे इतने सारे लोगों को 8 से 20 साल पहले नहीं पता होती थी जितनी इस वक्त पता है। आपके वालिद साहब और वालदा की उम्र, एग्जैक्ट उम्र इतने पहले नहीं पता होती थी आपके, आप बल्कि अब वो तो सबकी पता हो जाएगी। और आपके कितने दोस्त अहबाब हैं, आपका किससे रابطہ है, आपने क्या किया है, आपने पिछले 10 साल की हिस्ट्री आपकी क्या है, ये सब चीज़ें बड़ी तेज़ी से शेयर हो रही हैं। तो प्राइवेसी इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं रही जितनी पर्सनल स्पेस हो गई। अच्छा, जब आप इन चैलेंजेस और इन डायनेमिक्स को समझेंगे तो आप ये सोचेंगे कि मैं अपने बच्चों की पेरेंटिंग कैसे करूं। एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो 21st सेंचुरी ने एक और चैलेंज जो पैदा किया है, वो ये है कि कम्युनिटी लाइफ इज़ इन डेंजर। लोगों की जो कम्युनिटी लाइफ है और कम्युनिटी के साथ जो बॉन्ड है वो वीक हुआ है। एक और बड़ा चैलेंज ये है कि डिस्ट्रैक्शंस जो हैं वो बढ़े हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं इस वक्त जो पहले नहीं होते थे। तो इस सारे सिनेरियो में पेरेंटिंग के लिए क्या चैलेंजेस पैदा हुए?
सर, ये न्यूक्लियर फैमिली आल्सो इज अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर. जिस तरह आपने कहा कम्युनिटी के साथ कनेक्शन कम हुआ है, सो एक्सटेंडेड और जॉइंट फैमिलीज का भी कनेक्शन
कम हुआ है. बिल्कुल सही. बिल्कुल. फैमिली के जो मॉडल्स, ट्रेडिशनल मॉडल्स ऑफ फैमिलीज थे, वो अब आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, और जो मॉडर्न मॉडल है फैमिली का, वो लोग उसको एम्ब्रेस कर रहे हैं, और उसके अंदर नए चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ रहे हैं. जी,
आप ट्रेनर है, तो एक कॉन्क्रीट सवाल आपसे करता हूं. माय नेफ्यू इज हियर राइट फ्रॉम कनाडा, एंड सो आई एम ऑब्जर्विंग हिम, एंड आई कैन सी दैट इट्स बिकमिंग ऑलमोस्ट इंपॉसिबल टू रेज किड्स. आई डोंट हैव माय ओन. सो व्हाट हैपेंस इज दैट जो भी हो, वो थका हो, ठीक है ना, अगर आप उसके सामने स्क्रीन रख लें, वो ज़ॉम्बी की तरह बैठा होगा. He's distracted normally, but he's focused only there, and he's quiet. I don't think he's happy. So, could you address this screen thing? Because, I mean, what, children are becoming zombies. When they look at screens, they're not really happy. They're just mesmerized, hypnotized.
And not just with children. आपका क्या ख्याल है कि आप स्क्रीन के मैग्नेटिज्म से कोई भी फ्री नहीं है, तो आपके ऊपर भी ये मैग्नेटिज्म उसी तरह इन्फ्लुएंस करता है. बच्चे के ऊपर ज़्यादा करता है, आपके ऊपर भी करता है. तो बात बिल्कुल ठीक है. तो इस सिचुएशन में जो बहुत बड़ा चैलेंज है, वो ये है कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप कैसे स्ट्रेंथन किया जाए. रिलेशनशिप्स आर इन डेंजर. इन शॉर्ट, अगर मैं ये कहूँ कि चीज़ों की जो अहमियत है वो बढ़ गई है, और इंसान की अहमियत कम हो गई है. और रिलेशनशिप कैसे अपने बच्चों के साथ डेवलप किया जाए, और रिलेशनशिप कैसे अपने स्पाउस के साथ बेहतर किया जाए, रिलेशनशिप कैसे अपने साथ बेहतर किया जाए, इस चीज़ के लिए, इस चीज़ को एड्रेस करना पड़ेगा. तो हम एक शेयर करते हैं एक आइडिया, रिलेशनशिप, फाइव डायमेंशंस ऑफ रिलेशनशिप. फाइव डायमेंशंस ऑफ रिलेशनशिप हम कहते हैं कि रिलेशनशिप पांच डायमेंशंस पर, अपने साथ ताल्लुक, अपनों के साथ ताल्लुक, दूसरों के साथ ताल्लुक, खुदा के साथ ताल्लुक, और फितरत के साथ ताल्लुक. इन पांचों डायमेंशंस में अपने रिलेशनशिप को बेहतर करना 21वीं सदी ने मुश्किल कर दिया है. तो अब इसके लिए इस काम को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, क्योंकि पहले आप होता यह है कि हम फिजिकली अवेलेबल हो भी जाएं तो भी हम ऑक्यूपाइड होते हैं, इसलिए कि हमारे हाथ में एक डिवाइस होती है, और उसके नतीजे में हमारा इंटरेक्शन उस लेवल का, जो क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन है, जो क्वालिटी ऑफ टाइम है, वो मुतासर हो रहा है. तो एक लफ्ज़ कहा जाता है क्वालिटी टाइम. सुना है आपने क्वालिटी टाइम? अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम दें. तो क्वालिटी टाइम का क्या मतलब है? क्वालिटी टाइम के तीन बड़े मतलब हैं. आप बच्चों को देखिए, ये जो सारी मैंने अब तक, मैं ज़रा समअप करूँ. मैंने पहले ये कहा कि 21st सेंचुरी ने कुछ हमें अपॉर्चुनिटीज़ भी दी हैं, और 21st सेंचुरी ने कुछ हमारे लिए चैलेंजेस भी पैदा किए हैं. और इन सारे चैलेंजेस से अगर आपने इसको हैंडल करना है, पेरेंटिंग के अंदर जो बहुत बड़ा चैलेंज है वो ये है कि आपकी रिलेशनशिप अपने बच्चों से और अपनी फैमिली से कमज़ोर होती जा रही है. आज हर आदमी को क्लाइंट सेटिस्फैक्शन की फिक्र है, या बॉस को खुश रखने की फिक्र है, या कस्टमर को खुश रखने की फिक्र है, लेकिन फैमिली को मुतमईन करने की फिक्र उस लेवल पे नहीं है. फैमिली जिस भी हाल में जाए, लेकिन क्लाइंट खुश रहे, ये सारा कह लीजिए प्रॉब्लम है. तो इसके ऊपर हमें क्या काम करना चाहिए? इसके ऊपर हमें बच्चों के साथ हम क्या कर सकते हैं, या अपनी स्पाउस के साथ या फैमिली के साथ क्या कर सकते हैं कि हम क्वालिटी टाइम दें? क्वालिटी टाइम का क्या मतलब है? क्वालिटी टाइम के तीन मतलब हैं. क्वालिटी टाइम के तीन इंडिकेटर्स हैं, थ्री इंडिकेटर्स ऑफ क्वालिटी टाइम. आप चाहें तो इसे नोट डाउन करें. पहला इंडिकेटर ये है कि एजेंडा उनका होगा, बच्चों का होगा, या फैमिली का होगा. अगर फ़र्ज़ कीजिए कि मैं आपसे इस सेशन के बाद मिलना चाहूँ, और आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहूँ, आपसे कुछ क्वेश्चंस करूं और आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करूं, तो किसने किसको टाइम दिया? मैंने इन्हें टाइम दिया, या इन्होंने मुझे टाइम दिया? इन्होंने मुझे टाइम दिया. वजह इसलिए कि एजेंडा मेरा था, एजेंडा इनका नहीं था. میں نے ٹائم لیا, انہوں نے ٹائم دیا. ٹائم دینا کس کو کہتے ہیں, ٹائم لینا کس کو کہتے ہیں. اپنی فیملی میں اپنے اسپاؤس کو جب ہم کہتے ہیں میں فیملی کو بہت ٹائم دیتا ہوں, یا میں بیوی کو ٹائم دیتا ہوں, یا میں بچوں کو ٹائم دیتا ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے, اس کا پہلا انڈیکیٹر, کوالٹی ٹائم کا پہلا انڈیکیٹر یہ ہے کہ ایجنڈا ان کا ہوگا, ان کے ایجنڈا پہ بات ہوگی. جب آپ اپنے بچوں کو بلاتے ہیں اور ان سے ان کے ایگزامز اور ٹیسٹس اور ہوم ورک اور پورے دن کے روٹین کے بارے میں کوئسچنس کرتے ہیں, تو ایکچولی آپ ٹائم لیتے ہیں اور وہ آپ کو ٹائم دیتے ہیں. ٹائم دینا کسے کہتے ہیں, ٹائم اس کو دینا کہتے ہیں کہ آپ ان کے ایجنڈا پہ بات کریں گے. یہ کوالٹی ٹائم کا پہلا انڈیکیٹر ہے. کوالٹی ٹائم کا دوسرا انڈیکیٹر یہ ہے کہ جو پیریڈ آف کہہ لیجئے جو پریزنس ہے یا جو میٹنگ ٹائم ہے وہ انٹرپٹڈ ہوگا. اس میں موبائل فون اگر بجے گا تو آپ اٹینڈ نہیں کریں گے. جب آپ اپنے کلائنٹ کے ساتھ بیٹھتے ہیں یا جب آپ اپنے باس کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور آپ کا موبائل فون بجتا ہے, تو کیا آپ موبائل فون اٹینڈ کرتے ہیں؟ آپ نہیں اٹینڈ کرتے. لیکن جب آپ اپنے بچے کے ساتھ بیٹھتے ہیں یا اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور موبائل فون بجتا ہے, تو آپ اس کو ایکسکیوز می بھی نہیں کہتے, آپ موبائل فون اٹینڈ کرتے ہیں. اس لیے کہ ہم وہ آدمی جس سے ریلیشن شپ کے نتیجے میں پیسے آنے, اس کو آپ ویلیو دیتے ہیں, لیکن وہ پرسن جس کے ساتھ ریلیشن شپ کے نتیجے میں ہیپینس اور پیس اور ایک پلیزنٹ فیملی ایٹماسفیئر کریٹ ہونا ہے, اس کو ہم وہ ویلیو نہیں دے رہے. تو کوالٹی ٹائم کا دوسرا انڈیکیٹر یہ ہے کہ آپ کی جو ملاقات ہوگی بچوں سے وہ ایٹ لیسٹ 20 منٹس کی ہوگی. 20 منٹس کا انٹریکشن اگر ہے جس میں آپ انٹرپشنس کو اوائڈ کر رہے ہیں, آپ انٹرپٹ نہیں کر رہے اپنی کانورسیشن کو, موبائل نہیں اٹینڈ کر رہے, ٹی وی نہیں چل رہا, بچے بیٹھے ہوئے ساتھ میں ٹیلی ویژن بھی چل رہا ہے اور آپ ٹیلی ویژن بھی دیکھ رہے ہیں اور بات بھی کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہونا. تو وہ فوکسڈ اٹینشن ہے کم از کم 20 منٹس, ٹھیک ہے. یہ کوالٹی ٹائم کا سیکنڈ انڈیکیٹر ہے. کوالٹی ٹائم کا تھرڈ انڈیکیٹر یہ ہے کہ جس کو آپ نے ٹائم دیا ہے, اس کی بعد میں بھی ارج ٹو میٹ اگین اس کی زندہ رہے, وہ دوبارہ آپ سے ملنا چاہے, وہ یہ کہے کہ بھائی دوبارہ کب ملیں گے. یہ کوالٹی ٹائم کا تیسرا انڈیکیٹر ہے. تو ہم اپنے بچوں کو اور اپنی فیملی کو کوالٹی ٹائم دیں, اس کے نتیجے میں ہمارا ریلیشن شپ ان سے بہتر ہوگا, اس کے نتیجے میں کچھ آسانی ہوگی پیرنٹنگ کے اندر. ادروائز بچوں کا جو ریلیشن شپ گیجٹس کے ساتھ ہے, کوئی کمپیریسن نہیں ہے کہ ان کا وہ ریلیشن شپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہو, کوئی اس وقت کمپیریسن نہیں ہے. اگر بچے کا گیجٹ گم ہو جائے تو وہ بے چین رہتا ہے, لیکن اگر اس کی 2 دن اپنے ابا سے ملاقات نہ ہو تو وہ زیادہ سکون میں ہوتا ہے, کہتا ہے اچھا نہیں ہوئی, اس وقت یہ سچویشن ہوئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اپنے ساتھ تعلق کا مطلب یہ ہے, اچھا اگر اس کے لیے میں تھوڑی سی بریف کروں, اپنے ساتھ تعلق اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ کی ٹائم مینجمنٹ کا گول یہ ہو کہ میری روٹین میں فری ٹائم کے پاکٹس کریٹ ہوں. ٹائم مینجمنٹ کا گول یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی پروڈکٹیویٹی بڑھ جائے. ٹائم مینجمنٹ کے 2 گولز ہونے چاہیے. اینڈ آف دا ڈے پہ میری انرجی بچ جائے, جب ڈے اینڈ ہو تو میری انرجی, میں فلی ایگزاسٹڈ نہ ہوں جب شام ہو جائے رات ہو جائے, انرجی میرے اندر, یعنی دن ختم ہوا کام ختم ہوئے لیکن انرجی نہیں ختم ہوئی. اگر یہ ہو رہا ہے تو آپ کی ٹائم مینجمنٹ اچھی ہے. دوسری بات, اگر آپ کے روٹین میں فری ٹائم کے سلاٹس اویلیبل ہیں, فری ٹائم بہت ہی قیمتی, بہت ہی پریشیس ہے فری ٹائم, سالیٹیوڈ, فری ٹائم کے نتیجے میں آپ کی سالیٹیوڈ, آپ کی تنہائی بامانی ہو جائے گی, فری ٹائم کے نتیجے میں پرسنل ریفلیکشن کی اپرچونیٹی کریٹ ہوگی. مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارا روٹین اوورلی آکیوپائڈ ہے, ایک رولر کوسٹر کسی لائف ہے, پورا ویک ایسے تیزی سے گزر جاتا ہے اور پھر ویکینڈ آتا ہے, ویکینڈ کی اپنی روٹینز ہوتی ہیں, اپنے ساتھ تعلق اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ فری ٹائم ٹیپ کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں میرے پاس فری ٹائم مل رہا ہے, فری ٹائم نکالتے ہیں. اگر آپ کی روٹین فری ٹائم الاؤ نہیں کر رہی تو اپنے ساتھ تعلق دشوار ہو جاتا ہے. اپنے ساتھ تعلق اس وقت ہوتا ہے جب آپ اپنی تنہائیوں میں, آپ کے لیے تنہائی انجوائبل ہے, آپ کی تنہائی بامانی ہے. اپنے ساتھ تعلق اس وقت ہوتا ہے جب آپ غور و فکر اور تدبر کرتے ہیں, پرسنل ریفلیکشن جسے ہم کہتے ہیں. آپ اپنے انٹرنل ڈائیلاگ کو ریویو کرتے ہیں. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا مجھے جو کہتی ہے وہ تو کہتی ہے, میں خود اپنے آپ کو کیا کہتا ہوں. دیٹ از کالڈ انٹرنل ڈائیلاگ. تو اگر آپ کو کوئی برا کہتا ہے تو ایکچولی آپ کا برا اس وقت ہوتا ہے جب آپ بھی اپنے آپ کو برا کہتے ہیں. کسی اور کے برا کہنے سے آپ کا کوئی برا نہیں ہوتا. آپ ایکچولی جب آپ کا انر ڈائیلاگ, انٹرنل ڈائیلاگ افیکٹ کرتا ہے تو آپ کے ساتھ برا ہونا شروع ہوتا ہے. تو انسان اپنے اوپر غور کرے, اپنے روٹین پہ ریفلیکٹ کرے, اپنے سوچ کی ڈائریکشن کو ریویو کرے, اپنے پیراڈائم کو ریویو کرے کہ میں کس پرسپیکٹیو میں یا کس پیراڈائم میں چیزوں کو رکھتا ہوں, دیکھتا ہوں. یہ ہے اپنے ساتھ تعلق. اپنے مزاج پہ کام کرے, اپنے آپ کو نا امید نہ ہونے دے, اپنے آپ کو دل گرفتہ نہ ہونے دے. یہ ہے اپنے ساتھ تعلق. وہ انسان جو اپنے آپ سے کوئی توقع نہیں باندھ رہا, جو اپنے آپ سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں لگا رہا, جو اپنے آپ کو کوئی گول نہیں دے رہا, جو اپنی لرننگ کے لیے کچھ ٹارگٹ سیٹ نہیں کر رہا, اس کا اپنے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جو اپنے اوپر نگاہ نہیں رکھتا اس کا اپنے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہماری جو آنکھ ہوتی ہے اس کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر نگاہ رکھے. اس کی دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے آس پاس باہر نگاہ رکھے. اپنے اوپر نگاہ رکھنی یہ اپنے ساتھ تعلق کا کہہ لیجئے. اس کے لیے فری ٹائم, پرسنل ریفلیکشن, اس کی اپرچونیٹیز کریٹ کرنی چاہیے. اس کے لیے دیکھنا چاہیے. کچھ لوگوں کی لائف اس وقت جو سچویشن ہے کہ وہ بہت زیادہ مصروف ہو گئی ہے, اور جو فری ٹائم ہے وہ فری ٹائم یہ کھینچ لیتا ہے. تو اگر فری ہیں تو یہ ہے, یا پھر فری نہیں ہیں. تو ایسی صورت میں اپنے اوپر, اپنی ذات کے اوپر, اپنے نفس کے اوپر, اپنے ذہن کے اوپر, اپنے شعور کے اوپر غور کرنے کا موقع نہیں ملتا. انسان کو یہ سوچنے کا موقع نہیں مل رہا کہ میں ایسا کیوں ہوں جیسا ہوں, میں ایسا کیسے بنا جیسا بنا, میری اپنے ایموشنل لینڈسکیپ کو غور سے دیکھنے کا موقع اسے نہیں مل رہا. ٹھیک ہے, یہ ہے اپنے ساتھ تعلق. اور دوسروں کے ساتھ تعلق کا مطلب یہ ہے کہ میرا اور لوگوں کا آپس میں ریلیشن شپ کیسا ہے, اس پہ غور کریں. یہ لوگ مجھ سے کھچے کھچے کیوں رہتے ہیں, بڑی جلدی مجھے لوگوں کی بات بری کیوں لگ جاتی ہے, میں اپنے سے ڈفرینٹ انسان کو انجوائے کیوں نہیں کر پاتا, میری دوستیاں اتنی کم کیوں ہیں. تو یہ دوسروں کے ساتھ تھا. اپنوں کے ساتھ تعلق کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو آپ کو آپ کی پرائیویٹ لائف میں دیکھتے ہیں, یعنی کہ آپ کی فیملی, آپ کے گھر والے, ان کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ کیسا ہے, اسپاؤس کے ساتھ کیسا ہے. پتہ ہے یہ جسے ہم لائف پارٹنر کہتے ہیں, بہت سے لوگ ایک ایسی لائف گزار رہے ہیں جس میں لائف پارٹنر جو ہے وہ لائف پارٹنر نہیں ہے, وہ روم میٹ ہے خالی. لائف پارٹنر کو روم میٹ کی سطح پہ گرا کے زندگی گزارنا یہ تو کوئی بات نہیں ہے اس میں. یعنی لائف پارٹنر کہتے کسے ہیں کہ چار آنکھیں ایک ہی منظر دیکھ رہی ہوں, ان کے اندر ایک وننس اچیو ہو, اور وہ اسپرٹ آف ٹوگیدرنیس ان کی مینٹین ہو رہی ہو, نرچر کر رہی ہو, شیئرنگ کی اسپرٹ بہت زیادہ ہو. یہ ہے جس سے آپ اس کو اچیو کرتے ہیں. لیکن یہ تو ابھی ہم بہت فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, ہم نے ریلیشن شپ بلڈنگ پہ کام نہیں کیا. اس وقت جو بچوں کا پرابلم ہے, ریلیشن شپ اسٹارفڈ جنریشن ہے, یہ تعلق کو ترسی ہوئی نسل ہے. یہ اجنبی کے ساتھ تو سب کچھ کہہ سکتی ہے, سن سکتی ہے, اور اس کو ٹائم دے سکتی ہے, لیکن فیملی کے ساتھ کچھ کہنا سننا بتانا شیئر کرنا پوچھنا اور اس کے ساتھ ٹائم لگانا اس کے لیے دشوار ہو گیا ہے. کیا خیال؟ اگر ہم نے ایک ریسرچ ایک سروے کنڈکٹ کیا اور مختلف ایج بریکٹس کے اندر ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی مختلف سیگمنٹس میں کہ ان پانچ انسانوں کا نام بتائیے جن سے آپ سب کچھ شیئر کر سکتے ہیں اور آنکھ بند کر کے ٹرسٹ کر سکتے ہیں. تو آپ کو آپ کا کیا خیال ہے کہ کتنے لوگوں نے پیرنٹس کا نام ان پانچ لوگوں میں لکھا ہوگا؟ بہت کم تھے, اس سے کچھ زیادہ تھے لیکن بہت کم تھے. بہت بڑی تعداد ایسی ہے جن سے اگر آپ یہ پوچھیں کہ ان پانچ لوگوں کا نام بتاؤ جن سے تم سب کچھ شیئر کرنے کے لیے راضی ہو اور آنکھ بند کر کے اس پہ ٹرسٹ کر سکتے ہو, تو ان پانچ لوگوں میں وہ جن لوگوں کا نام لے رہا ہے اس میں پیرنٹس نہیں ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پیرنٹس کے ساتھ ایک کمپلیٹ ڈسکنیکٹ ہے نا, مطلب وہ نہیں ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتا. تو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ اپنے بچے کے ساتھ ہم اپنے بچوں کو کنٹرول کرنے کی تو کوشش کرتے ہیں, انہیں انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش نہیں کرتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہماری بات مانیں. لیکن تربیہ کسے کہتے ہیں؟ تربیہ اسے نہیں کہتے کہ آپ کا بچہ آپ کے آرڈر کو فالو کرے, بلکہ تربیہ اسے کہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اچھے کام کو کرنا چاہے. وہ اچھا کام اس لیے کر رہا ہے کیونکہ آپ کا خوف ہے, یہ تربیہ نہیں ہے. وہ اچھا کام اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اس کا اچھا کام کرنے کا دل چاہتا ہے, یہ تربیہ ہے. انسان اپنی چوائسز میں سینسیبل اور ریسپانسیبل ہو جائے, یہ تربیہ ہے. تو اس کے اوپر ٹائم لگانے کی ضرورت ہے. ہمارا یوٹیوب چینل ہے جس پہ بہت سارے پروگرامز یوتھ کے لیے, پیرنٹس کے لیے اور ٹیچرز کے لیے, ان کی پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے اویلیبل ہیں. اور ERDC کے نام سے یوٹیوب چینل ہے. اگر ERDC کے نام سے آپ سرچ کریں گے تو بہت سارے آپ کو پروگرامز مل جائیں گے, آپ اس میں سے یہ لے سکتے ہیں.